हमारा अंजाम क्या होगा? बजुज खुदा के अंजाम कौन बतला सकता है, और बजुज उस गैबदान के आखिरी दिनों की किसको खबर है? दुश्मन कहता है कि बेहतर हो कि ये शख्स जिल्लत के साथ हलाक हो जाए, और हासिद की तमन्ना है कि इस पर कोई ऐसा अजाब पड़े कि उसका कुछ भी बाकी ना रहे। लेकिन ये सब लोग अंधे हैं, और अनकरीब है कि उनके बद ख्यालात और बद इरादे इन्हीं पर पड़ें। इसमें शक नहीं कि मुफ्तरी बहुत जल्द तबाह हो जाता है, और जो शख्स कहे कि मैं खुदा ताला की तरफ से हूँ और उसके इल्हाम और कलाम से मुशर्रफ हूँ, हालांकि ना वो खुदा ताला की तरफ से है ना उसके इल्हाम और कलाम से मुशर्रफ है, वो बहुत बुरी मौत से मरता है और उसका अंजाम नहायत ही बद और काबिल इबरत होता है। लेकिन जो सादिक और उसकी तरफ से हैं, वो मर कर भी जिंदा हो जाया करते हैं, क्योंकि खुदा ताला के फजल का हाथ उन पर होता है और सच्चाई की रूह उनके अंदर होती है। अगर वो आजमाइशों से कुचले जाएं और पीसे जाएं और खाक के साथ मिलाए जाएं और चारों तरफ से इन पर आनोतान की बारिशें हों और उनके तबाह करने के लिए सारा ज़माना मंसूबे करे, तब भी वो हलाक नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस सच्चे पैवंद की बरकत से जो उनको महबूब हकीकी के साथ होता है, खुदा उन पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें नाजिल करता है, मगर इसलिए नहीं कि वो तबाह हो जाएं, बल्कि इसलिए कि ता ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल में तरक्की करें। हर एक जोहरे काबिल के लिए यही कानून कुदरत है कि अव्वल सदमात का तख्ता मश्क होता है। मसलन इस ज़मीन को देखो, जब किसान कई महीना तक अपनी कलबारानी का तख्ता मश्क रखता है और हल चलाने से इसका जिगर फाड़ता रहता है, यहाँ तक कि वह ज़मीन जो पत्थर की तरह सख्त और दुरुस्त मालूम होती थी, सुरमा की तरह पिस जाती है और हवा उसको इधर उधर उड़ाती है और परेशान करती रहती है, और वह बहुत ही खस्ता शिकस्ता और कमज़ोर मालूम होती है, और एक अनजान समझता है कि किसान ने चंगी भली ज़मीन को ख़राब कर दिया और बैठने और लेटने के लायक न रही। लेकिन इस दाना किसान का फेल अबस नहीं होता। वो खूब जानता है कि इस ज़मीन का आला जौहर बजुज इस दर्जा की कोफ्त के नमूदार नहीं हो सकता। इसी तरह किसान इस ज़मीन में बहुत उम्दा किस्म के दाने तुखमरेजी के वक्त बखेर देता है, और वह दाने खाक में मिलकर अपनी शक्ल और हालत में करीब करीब मट्टी के हो जाते हैं, और उनका वो रंग रूप सब जाता रहता है। लेकिन वो दाना किसान इसलिए इनको मट्टी में नहीं फेंकता कि वो इसकी नज़र में जलील हैं, नहीं, बल्कि दाने उसकी नज़र में नहायत ही बेशकीमत हैं, बल्कि वो इसलिए उनको मट्टी में फेंकता है कि ता एक एक दाना हज़ार हज़ार दाना होकर निकले और वो बढ़ें और फूलें और उनमें बरकत पैदा हो और खुदा के बंदों को नफ़ा पहुँचे। बस इसी तरह वो हकीकी किसान कभी अपने ख़ास बंदों को मट्टी में फेंक देता है और लोग उनके ऊपर चलते हैं और पैरों के नीचे कुचलते हैं और हर एक तरह से उनकी जिल्लत जाहिर होती है। तब थोड़े दिनों के बाद वो दाने सब्जा की शक्ल पर होकर निकलते हैं और एक अजीब रंग और आब के साथ नमोदार होते हैं, जो एक देखने वाला ताजुब करता है। यही कदीम से बरगजीदा लोगों के साथ सुन्नतुल्लाह है कि वो वर्ताए अजीमा में डाले जाते हैं, लेकिन गर्क करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ता इन मोतियों के वारिस हों जो दरियाए वहदत के नीचे हैं, और वो आग में डाले जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि जलाए जाएं, बल्कि इसलिए कि ता खुदा ताला की कुदरतें जाहिर हों और उनसे ठट्ठा किया जाता है और लानत की जाती है, और वो हर तरह से सताए जाते और दुख दिए जाते और तरह तरह की बोलियां उनकी निस्बत बोली जाती हैं और बदजनियाँ बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि बहुतों के ख्यालो गुमान में भी नहीं होता कि वो सच्चे हैं, बल्कि जो शख्स उनको दुख देता और लानतें भेजता है, वह अपने दिल में ख्याल करता है कि बहुत ही सवाब का काम कर रहा है। बस एक मुद्दत तक ऐसा ही होता रहता है, और अगर इस बरगजीदा पर बशरियत के तकाजा से कुछ कब्ज़दारी हो तो खुदा ताला उसको इन अल्फाज से तसल्ली देता है कि सब्र कर, जैसा कि पहलों ने सब्र किया, और फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। बस वो सब्र करता रहता है यहाँ तक कि अमरे मुकद्दर अपने मुद्दत मुकर्रा तक पहुँच जाता है। तब गैरत इलाही इस गरीब के लिए जोश मारती है और एक ही तजल्ली में आदा को पाश पाश कर देती है। सो अव्वल नौबत दुश्मनों की होती है और अखीर में इसकी नौबत आती है। इसी तरह खुदावंद करीम ने बारहा मुझे समझाया कि हंसी होगी और ठट्ठा होगा और लानतें करेंगे और बहुत सताएंगे, लेकिन आखिर नुसरत इलाही तेरे शामिल हाल होगी और खुदा दुश्मनों को मगलूब और शर्मिंदा करेगा। चुनांचे बराहीन अहमदिया में बहुत सा हिस्सा इल्हामात का इन्हीं पेशगोइयों को बतला रहा है और मुकाशफात भी यही बतला रहे हैं। चुनाचे एक कश्फ में मैंने देखा कि एक फरिश्ता मेरे सामने आया اور وہ کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جیتا من حضرت الوتر، یعنی میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے۔ تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں، مگر کیا تم بھی پھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا، لیکن یہ سب امور درمیانی ہیں، اور جو خاتمہ امر پر مقدر ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہا تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخرکار تجھے فتح دوں گا اور ہر ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا اور تجھے غلبہ ہوگا اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا۔ اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے، بلکہ اس واسطے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے۔ بس جب ان الہامات کا ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔